प्रवचन सार प्रवचन सुधा लेक्चर नंबर 608.
ओम नमः सिद्धेभ्य. ओम नमः सिद्धेभ्य. ओम शुद्धात्मने नमः.
नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वच्छायाणं नमो लोए सौवसाहूणं सुर असुर नरपति वंद्यने प्रविनष्ट घाति कर्मने प्रणमन करो धर्म कर्ता तीर्थ श्री महावीर ने वड़ी शेष तीर्थंकर ने सौ सिद्ध शुद्धास्तित्व ने मुनि ज्ञान दृग चारित्र तपवीर्या चरण संयुक्तने ते सर्वने साथे तथा प्रत्येकने वंदो वणी हो मनुज क्षेत्रे वर्तता अरहंतने अरहंतने सौ सिद्धने य नमस्करण करिए रीते गणधरने अध्यापकोने सर्व साधु समूहने तसु शुद्ध दर्शन ज्ञान मुक्त पवित्र आश्रम पामिने प्राप्ति करू साम्यनि ये नाथि शिव प्राप्ति बने.
आचार्य श्री कुनकुन भगवान द्वारा रचित यह प्रवचन सार नामक परमागम ग्रंथ है. उस पर अमृतचंद्राचार्य ने तत्व प्रदीपिका टीका लिखी हुई है तथा जयसेनाचार्य ने तात्पर्य उत्ति टीका लिखी है. इन पर गुरुदेव श्री कांजी स्वामी के जो प्रवचन हुए हैं वे प्रवचन सुधा पुस्तक रूप से प्रसिद्ध हुए हैं. उसमें से आज हम सातवीं पुस्तक प्रारंभ कर रहे और गाथा 172. गुजराती पेज कौन सा है?
324
मिला उसमें अलग है. हाँ देखो अभी हम गाथा पढ़ने जा रहे हैं. मैं हिंदी में से पढ़ रही हूँ. इसे गाथा तो सब सर्वत्र सेम है. अरसमरूवम गंधम अवत्तम चेदना गुणम सत्तम जान अलिंग गहनम जीवमनिदिर्थ संठानम छे चेतना गुण गंधरूप सशब्द व्यक्ति न जीवने वड़ी लिंग ग्रहण नथी अने संस्थान भाख्युन ते हने. इसी का अन्वयार देखते हैं. देखो वैसे ये गाथा तो सभी परमागमों में पाई जाती है. जीव को अरस अरूप अगंध अव्यक्त चेतना गुणयुक्त और अशब्द अलिंग ग्रहण यानी लिंग द्वारा ग्रहण न होने योग्य लिंग यानी चिन्ह कोई भी और जिसका कोई संस्थान नहीं कहा गया है ऐसा जानो. अभी इसी की टीका बहुत बड़ी है. हम पढ़ेंगे उसको फिर उसको डिटेल में गुरुदेव भी समझाएंगे. रसगुण के अभाव रूप स्वभाव वाला होने से देखो पुद्गल में स्पर्श रस गंध वर्ण गुण है और जीव में अरस नाम का गुण है. केवल रस नहीं है, नहीं रस नहीं ऐसा उसका स्वभाव है, स्वभाव नहीं उसका गुण है. यानी अरस वाला उसका स्वभाव है, अरस नाम का उसमें गुण है. उसको कौन सा गुण कहते हैं मालूम है? प्रतिजीवी. एक अणुजीवी नहीं जिसको प्रतिजीवी में निगेटिव स्टेटमेंट आता है ना, अरस. भले अरस है परंतु उसका जीव का गुण है अपना, विशेष गुण है उसका. ऑफकोर्स वो अन्य सभी पांच द्रव्य में पाया जाएगा पुद्गल को छोड़कर. तो जीव को अरस नहीं, नीचे पढ़ रहे थे ठीक है. आत्मा रस गुण के अभाव रूप स्वभाव वाला होने से, रूप गुण के अभाव रूप स्वभाव वाला होने से उसके स्वभाव है रस अरूपी. गंध गुण के अभाव रूप स्वभाव वाला होने से, ऊपर है ना अरसम रूपम अगंधम. स्पर्श गुण रूप व्यक्तता के अभाव रूप स्वभाव वाला होने से, अव्यक्त जो कहा वो स्पर्श गुण की व्यक्तता वहाँ नहीं है क्योंकि स्पर्श गुण की व्यक्तता का अभाव है, स्पर्श गुण ही नहीं है वहाँ पर, अस्पर्शी भी कह सकते हम उसको. शब्द पर्याय के अभाव रूप स्वभाव वाला होने से, अभी तक गुण की अभाव, गुण का अभाव, गुण का अभाव, गुण का अभाव कहा. शब्द के लिए क्या लिखा है? शब्द पर्याय के अभाव रूप स्वभाव वाला होने से. कल ही कोई पूछ रहा था ना हमें कि सबको गुण लिया और शब्दों को पर्याय लिया, कैसे शब्द पर्याय कैसे हो सकती है? मैंने बोला द्रव्य पर्याय है वो, तो गुण की पर्याय नहीं है, द्रव्य की पर्याय है. अनेक समान जातीय द्रव्य पर्याय है ना. तो शब्द पर्याय के अभाव रूप स्वभाव वाला होने से तथा इन सब के कारण, यानी रस रूप गंध इत्यादि के अभाव रूप स्वभाव के कारण, इन सबका स्वभाव है ना, इन सबका कारण है ना क्या? पहले क्या बताया? रस स्वभाव है, अरूप स्वभाव है, अगंध स्वभाव है, अस्पर्श स्वभाव है और शब्द पर्याय का भी अभाव रूप स्वभाव है. इसके कारण, ऐसा स्वभाव होने के कारण, लिंग के द्वारा अग्राह्य होने से, जैसे पुद्गल में स्पर्श रस गंध वर्ण है और हम इंद्रियों के द्वारा उनका ग्रहण होता है, वो चिन्ह द्वारा हम उसका ग्रहण होता है, जानने में आता है, ग्रहण करना है नहीं जानने में आना. तो कहते कि इन सब के कारण ने, अभाव रूप स्वभाव के कारण, लिंग के द्वारा अग्राह्य होने से, यानी किसी चिन्ह के द्वारा हम उसको जान सके ऐसी बात नहीं होने से, और सर्व संस्थानों के अभाव रूप स्वभाव वाला होने से. सर्व संस्थान ने, संस्थान ने आकार, जैसे चौकोर है, त्रिकोण है, गोल है, जो कुछ है, तो कैसे ऐसे कोई भी उसका निश्चित संस्थान नहीं होता है. इसलिए सर्व संस्थानों के अभाव रूप स्वभाव वाला होने से आत्मा को पुद्गल द्रव्य से विभाग का साधनभूत. देखो हमारा प्रयोजन क्या है कि हमें तो भेद ज्ञान करना है. यहाँ क्या लिखा है? पुद्गल द्रव्य से विभाग का साधनभूत. पुद्गल द्रव्य से हम भिन्न है, जुदे है, उसके लिए साधन है. ये कौन सा साधन है? अरसपना, अरूपपना, अगंधपना, अव्यक्तपना, अशब्दपना, यानी अलिंग ग्राह्यपना और असंस्थानपना है. फिर से पढ़ते, पहले उन्होंने उसके स्वभाव बताए. रस स्वभाव वाला है, यानी उनको अभाव रूप स्वभाव बताया. रस के अभाव रूप स्वभाव वाला है, रूप के अभाव रूप स्वभाव वाला है, परंतु हाँ रूप गुण लिया, रस गुण का अभाव लिया. फिर गंध गुण के अभाव रूप स्वभाव बताया, स्पर्श गुण की व्यक्तता के अभाव रूप स्वभाव वाला लिया, और शब्द के लिए उस शब्द पर्याय के अभाव रूप स्वभाव वाला है, और किसी लिंग के द्वारा अग्राह्य है, और सभी संस्थानों के अभाव रूप स्वभाव वाला है. संस्थान ने आकार, वो नहीं, वो नहीं, कुंडक संस्थान है वैसी बात नहीं. यहाँ पर वो तो सामान्य रूप से शरीर का आकार बताया, कोई भी आकार नहीं उसको निश्चित, ऐसा कोई आकार नहीं होता है. सर्व संस्थान बताए ना, आत्मा को पुद्गल द्रव्य से विभाग का साधनभूत, यानी इसलिए हम आत्मा को पुद्गल से जुदा जान सकते हैं, नक्की कर सकते हैं. और उसका साधन क्या है? रसपना, यानी आत्मा में जो अरसपना अगंधपना वगैरह वो उसके साधन है, किसके? पुद्गल से जुदा जानने के लिए। अरसपना, अरूपपना, अगंधपना, अव्यक्तपना, अशब्दपना, अलिंग ग्राह्यपना और असंस्थानपना है। पना यानी उसका वो गुण बताया, पहले उसका स्वभाव बताया क्या है और उसके कारण क्या हो रहा है, पुद्गल से वो भिन्न जान सकते हैं उसको। पुद्गल तथा अपुद्गल ऐसे समस्त अजीव द्रव्यों से विभाग का साधन तो चेतना गुणमयपना है। ये क्या कहना चाहते हैं? पुद्गल से भिन्न जानने के लिए उन्होंने ये सब बातें बताई, तो ये बातें बताइए तो अन्य अजीव भी है जो इसमें आ गए। तो कहते पुद्गल और अपुद्गल ऐसे समस्त अजीव द्रव्यों से विभाग का साधन। पुद्गल से विभाग का साधन तो अरस अरूप अगंध वगैरह बता दिया, परंतु अरस अरूप अगंध तो अन्य भी द्रव्य में है, धर्म में, अधर्म में, आकाश में, काल में, उनसे भी भिन्नता का साधन क्या है? तो कहते कि चेतनापना, चेतना गुणमयपना। पहले अकेले पुद्गल से भिन्नपना किसके आधार से, किसके साधन से होता है वो बताया, परंतु समस्त पुद्गल तथा अपुद्गल ऐसे अन्य जो द्रव्य है उनसे जीव द्रव्य को विभाग करने, विभाग करने ने उसका जुदापना जानना, भिन्न करना नहीं, भिन्न है वो, भिन्नपना हमको जानना है, उसको विभाग कहा, उसका साधन क्या है? तो चेतना गुणमयपना है। और वही यानी जो चेतना गुणमयपना है वही मात्र स्वजीव द्रव्याश्रित होने से, ये चेतना गुणमयपना किसमें है? तो स्वजीव, स्वजीव द्रव्य, स्वजीव द्रव्य के आश्रित होने से स्वलक्षणपने को धारण करता हुआ आत्मा का शेष अन्य द्रव्यों से विभाग यानी भेद सिद्ध करता है। हमें तो अन्य द्रव्यों से भिन्नता समझनी है, जाननी है, पहचाननी है, तो कहते कि उसके लिए उन्होंने क्या कहा, ये जो उन्होंने अभी बात बताई है चेतना गुणमयपना की, वो मात्र स्वजीव द्रव्याश्रित है, अन्य द्रव्याश्रित नहीं है, इसलिए स्वलक्षणपने को धारण करता हुआ कौन है? आत्मा। तो आत्मा का शेष अन्य द्रव्यों से भेद सिद्ध करता है। जहाँ अलिंग ग्राह्य कहना है वहाँ जो अलिंग ग्रहण कहा है वह बहुत से अर्थों की प्रतिपत्ति, प्रतिपत्ति यानी प्राप्ति, प्रतिपादन, प्रतिपत्ति जान ज्ञान को भी कहेंगे, करने के लिए है। क्या है? अलिंग ग्राह्य और अलिंग ग्रहण। जहाँ अलिंग ग्राह्य कहना है आत्मा कैसा है? अलिंग ग्राह्य है। और अलिंग ग्रहण उसका तो हम चिन्ह कहेंगे, गुण कहेंगे। वह बहुत से अर्थों की प्रतिपत्ति करने के लिए कहा है, वह इस प्रकार है। अभी यहाँ विस्तार से बताएंगे, यहाँ मैक्सिमम उसके कुछ 20 भेद किए हैं, है ना, प्रवचन सार में ये विशेषता है। और स्वयं आचार्य अमृतचंद्र के द्वारा ये टीका लिखी गई है, तो उसको हम पढ़ेंगे अभी। पहला नंबर, ग्राहक, ग्राहक करते थे ज्ञायक, ग्रहण करना यानी लेना देना वो बात यहाँ नहीं है, ग्रहण यानी जानना। ग्राहक यानी ज्ञायक, जिसके लिंगों के द्वारा अर्थात इंद्रियों के द्वारा ग्रहण नहीं होता यानी जानना नहीं होता, वह अलिंग ग्रहण है। इस प्रकार आत्मा अतीन्द्रिय ज्ञानमय है। अतीन्द्रिय ज्ञानमय क्यों कहा? इंद्रियों के द्वारा उसको जान नहीं सकते, इसलिए अतीन्द्रिय ज्ञानमय कहा। यहाँ लिंग का अर्थ क्या है किया? इंद्रिय। लिंग के अलग अलग अर्थ बताएंगे, तो लिंग के द्वारा ग्राह्य नहीं होता, जाना नहीं होता, उसके अर्थ होता है कि इंद्रियों के द्वारा उनका ग्रहण नहीं होता, ग्रहण नहीं होता ना, इंद्रियों के द्वारा हम आत्मा को जान नहीं सकते। इसलिए क्या सिद्ध हुआ? आत्मा अतीन्द्रिय ज्ञानमय है, इस अर्थ की प्राप्ति होती है, यानी यह अर्थ समझ में आ जाता है। जैसे धुएं से, नहीं बीच सेकंड पॉइंट रह गया, ग्राह्य, ग्राहक यानी ज्ञायक और ग्राह्य यानी ज्ञेय, तो ग्राह्य यानी ज्ञेय जिसका लिंगों के द्वारा अर्थात इंद्रियों के द्वारा ग्रहण यानी जानना नहीं होता वह अलिंग ग्रहण है। इस प्रकार आत्मा इंद्रिय प्रत्यक्ष का विषय नहीं है इस अर्थ की प्राप्ति होती है। ऊपर क्या बताया, इंद्रियों के द्वारा ग्रहण नहीं होता, जानना नहीं होता। नहीं नहीं, देखो देखो, ऊपर जो पहला जो है ना वो जानने वाला है, तो इंद्रियों के द्वारा वो नहीं जानता, ऐसा इंद्रियों के द्वारा आत्मा का जानना नहीं होता है, वो स्वयं अपने से ही जानता है। इंद्रिया निमित्त है, उसके द्वारा उससे आत्मा नहीं जानता, ये वहाँ लेना है। और सेकंड में आत्मा जो गेयों को जान गेय बनता है ना, तो इंद्रियों के द्वारा आत्मा का ग्रहण नहीं होता। ऊपर देखना देखना है कि इंद्रियों के द्वारा आत्मा जानता नहीं है, और यहाँ इंद्रियों के द्वारा आत्मा जानने में नहीं आता,
जनाता नहीं।
यह पूरे अलिंग ग्रहण ही चल रहा है। ये बता है ना, एक पहला बोला भी देखा, यानी आत्मा जो ग्राहक है जानने वाला है वो इंद्रियों के द्वारा नहीं जान रहा है, वो उसका अतीन्द्रिय ज्ञान से जानता है। और दूसरी बात, आत्मा जब गेय रूप से जानने में आता है तो किसी लिंग के द्वारा यानी इंद्रियों के द्वारा उसको हम जान नहीं सकते, इसलिए सेकंड पॉइंट हुआ। तीसरा पॉइंट, जैसे धुएं से अग्नि का ज्ञान होता है उसी प्रकार लिंग द्वारा अर्थात इंद्रिय गम्य यानी इंद्रियों से जानने योग्य चिन्ह द्वारा जिसका ग्रहण नहीं होता वह अलिंग ग्रहण है। देखो ये धुएं से अग्नि का ग्रहण कैसे हो जाता है, पहले प्रत्यक्ष हमने देखा है जहाँ धुआं था वहाँ तो अग्नि भी थी, अग्नि बिना धुआं नहीं होता, धुएं बिना अग्नि हो सकता है परंतु अग्नि बिना धुआं नहीं होता, तो हमने देखा है प्रत्यक्ष। और फिर अनुमान से जैसे किसी दूर पर्वत पर धुआं दिख रहा है, या ऐसे भी हम देखें ना कहीं से धुआं बहुत आ रहा है तो हम क्या विचार करें, अरे वहाँ अग्नि होनी चाहिए। ये क्या है, ये अनुमान का विषय, इसको अनुमान कहते हैं, किसी चिन्ह द्वारा वो उस चीज़ को पहचानना। तो यहाँ क्या कहते हैं, जैसे धुएं से अग्नि का ज्ञान होता है, जहाँ धुआं है वहाँ अग्नि होनी ही चाहिए, हमें अग्नि दिख नहीं रही परंतु धुआं दिख रहा है, फिर भी हम अग्नि को जान रहे हैं। उसी प्रकार लिंग द्वारा अर्थात इंद्रिय गम्य चिन्ह द्वारा, समझ में आती है बात, इन इंद्रियों से कोई ऐसी बात समझ में आवे और जिसके द्वारा हम आत्मा का अनुभव करें, अनुभव ने अनुमान करें, अनुमान ये अनुमान नहीं हो सकता, इंद्रिय के आत्मा का अनुभव अनुमान नहीं होता। अभी हमको मालूम है द्विंद्रिय तीन्द्रिय वगैरह, हम इसको कहते हैं जीव है, अनुमान से जाना हमने उसको, शरीर को जाना, वहाँ उसके होने वाली कुछ क्रियाओं को जाना, वो जान रहा है या कुछ भाग रहा है डर से वो हम जान सकते, इसलिए हमने वो जीव होने का अनुमान किया, परंतु हमने उस आत्मा को नहीं जाना है, आत्मा वो जानने में नहीं आ रहा है, या अपना ही को ही जानना है तो किसी चिन्ह के द्वारा उसका अनुमान करके नहीं जान सकते, मात्र अनुमान से नहीं जानते। अनुमान तो होता है पर मात्र अनुमान से आत्मा अनुभव में अनुभव नहीं हो सकता उसका। अनुमान से हम निश्चित कर सकते हैं यह जीव है, परंतु यहाँ आत्मा को जानने की बात चल रही है ना। तो देखो, इंद्रिय गम्य चिन्ह के द्वारा जिसका ग्रहण नहीं होता वह अलिंग ग्रहण है। इस प्रकार आत्मा इंद्रिय प्रत्यक्ष पूर्वक अनुमान का विषय, ये इंद्रिय प्रत्यक्ष होकर फिर वो कोई चिन्ह दिखा हमें और फिर बाद में हमने आत्मा का अनुमान किया, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसे अर्थ की प्राप्ति होती है। चौथा पॉइंट, दूसरों के द्वारा यानी मात्र लिंग द्वारा ही जिसका ग्रहण नहीं होता वह अलिंग ग्रहण है, यानी केवल लिंग द्वारा ही उसका ग्रहण हो जाएगा ऐसा नहीं है। उसका अर्थ क्या है, इस प्रकार आत्मा अनुमेय मात्र केवल अनुमान से ही ज्ञात होने योग्य नहीं है, ऐसे अर्थ की प्राप्ति होती है। तो केवल अनुमान से ही जाना जाता है, आत्मा का अनुभव नहीं होता, ये बात नहीं है, क्योंकि आत्मा प्रत्यक्ष अनुमान प्रत्यक्ष ज्ञान का विषय है, स्व संवेदन ज्ञान का विषय है, मात्र वो अनुमान से जाना गया ऐसा अनुमेय नहीं है, इसलिए मात्र शब्द डाला उन्होंने। कुछ अंश तक हम उसका अनुमान करते कि है, परंतु उसका अनुभव नहीं होता है। क्या कहा? अनुमान विषय नहीं है। हाँ, मैं केवल अनुमान से जानना जाता है ऐसा नहीं है। देखो फिर से ऊपर, इस प्रकार आत्मा इंद्रिय प्रत्यक्ष पूर्वक अनुमान का विषय नहीं है। एक बात हुई, अनुमान का विषय नहीं हो, अनुमेय नहीं, ऐसा हुआ। और दूसरे में क्या बताया? दूसरों के द्वारा दूसरा उसको जाने, तो कहते कि मात्र अनुमेय मात्र यानी केवल अनुमान से ही ज्ञात होने योग्य नहीं है, ऐसे अर्थ की प्राप्ति होती है। ये जो स्मॉल डिफरेंस है ना, वो तो हाँ गुरुदेव तो उसको बहुत अच्छी तरह से खोलते हैं। सातवीं पुस्तक चल रही है अपनी। हाँ, दूसरों के द्वारा नहीं जाना जाता, ऐसा ही बरोबर। देखो हम तो जब सीखते हैं तो अनुमान से जानते, यहाँ जीव है, यहाँ ये अजीव है, ये जीव है, कैसे जानते हैं? तो हम वो शरीर देखकर जानते हैं या हम आगम से जानते हैं, परंतु ये आत्मा नहीं दिख रहा है ना वहाँ पर। हाँ, अनुभव तो नहीं होगा उसका। ये आत्मा अनुमेय मात्र नहीं है, ऐसे यानी बस केवल चिन्ह के द्वारा जाना जाएगा या अनुमान से ही जाना जाएगा, ऐसा उसका स्वरूप नहीं है। पांचवा पॉइंट, जिसके लिंग से ही पर का ग्रहण नहीं होता वह अलिंग ग्रहण है। इस प्रकार आत्मा अनुमाता मात्र केवल अनुमान करने वाला ही नहीं है, ऐसे अर्थ की प्राप्ति होती है। अनुमेय मात्र नहीं, यानी अनुमेय से ही अनुमान से ही उसको जाना जाए, आत्मा को जाना जाए, ऐसा नहीं है। अब कहते आत्मा दूसरों को जो जानता है वो मात्र अनुमान से जानता, ऐसा नहीं है। यहाँ लिखा है ना अनुमात्रा अनुमाता मात्र नहीं है, यानी केवल अनुमान करने वाला नहीं है, वो प्रत्यक्ष जानने वाला है। केवल ज्ञान तो प्रत्यक्ष है ना, और हम इंद्रिय प्रत्यक्ष भी कहते हैं। कब? व्यवहार में, जिसको साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष कहते हैं। परंतु केवल उसने अनुमान से ही जाना, ऐसा नहीं है, ये कह रहे हैं। छठा पॉइंट, जिसके लिंग के द्वारा नहीं किंतु स्वभाव के द्वारा ग्रहण होता है वह अलिंग ग्रहण है। इस प्रकार आत्मा प्रत्यक्ष ज्ञाता है, ऐसे अर्थ की प्राप्ति होती है। यानी वो ज्ञान अपने स्वभाव से ही सबको जान लेता है, ये किसी चिन्ह से ही जाना, इसलिए उसको इंद्रिय से के द्वारा देखकर जाना, वो स्वभाव से ही वो ज्ञाता है। सात, जिसके लिंग द्वारा अर्थात उपयोग नामक लक्षण द्वारा ग्रहण नहीं है, अर्थात गेय पदार्थों का आलंबन नहीं है, वह अलिंग ग्रहण है। इस प्रकार आत्मा के बाह्य पदार्थों का आलंबन वाला ज्ञान नहीं है, ऐसे अर्थ की प्राप्ति होती है। यहाँ क्या कहना चाहते हैं? यानी गेय पदार्थों का आलंबन नहीं है वह अलिंग ग्रहण है, यानी वो ज्ञान अपने स्वभाव से ही जान लेता है। गेय के लिंग जाने, उसे चिन्ह जाने, इसलिए उसको उसके द्वारा जान लिया, ऐसा नहीं है। यहाँ लिखा ना जिसके लिंग द्वारा, लिंग किसको कहे पर? उपयोग नामक लक्षण द्वारा ग्रहण नहीं, अर्थात गेय पदार्थों का आलंबन नहीं है, वह अलिंग ग्रहण है। इस प्रकार आत्मा के बाह्य पदार्थों का आलंबन वाला ज्ञान नहीं है, ऐसे अर्थ की प्राप्ति होती है। ये प्रत्यक्ष ज्ञान है, ये बात सिद्ध कर रहे हैं। जो लिंग को अर्थात उपयोग नामक लक्षण को ग्रहण नहीं करता, अर्थात स्वयं कहीं बाहर से नहीं लाता, सो अलिंग ग्रहण है। क्या कहा? ये उपयोग नामक लक्षण उसने कहीं बाहर से ग्रहण नहीं किया है, वो उसका स्वभाव है। इस प्रकार आत्मा जो कहीं से नहीं लाया ज्ञान वाला है, ऐसे अर्थ की प्राप्ति होती है। यहाँ ग्रहण यानी उसने बाह्य से कुछ ग्रहण किया, ऐसा नहीं है। बाह्य से उसने आत्मा को इस उपयोग को लाया, ऐसा नहीं है। वो स्वयं ही उपयोग वाला है, उपयोग बाहर से कहीं नहीं लाया उसने। नौ नंबर, जिसे लिंग का अर्थात उपयोग नामक लक्षण का ग्रहण अर्थात पर से हरण नहीं हो सकता, अन्य ले नहीं ले जा सकते, अन्य से नहीं ले जाया जा सकता, सो अलिंग ग्रहण है। यानी आत्मा का जो उपयोग नामक चिन्ह है, जो अन्य कोई उससे चुरा कर ले जावे, उसे जबरदस्ती ले जावे, ऐसा नहीं है। दूसरे उसको ग्रहण नहीं कर सकते, वो अलिंग ग्रहण है। एक ग्रहण एक शब्द पर और लिंग एक शब्द पर, उन्होंने कितने अलग अलग पॉइंट्स बताए, है ना। हर जगह लिंग का और उसका ग्रहण का अलग अलग, पहले तो ज्ञान के लिए ग्रहण शब्द आया, अब यहाँ ग्रहण यानी लेना, इस अर्थ में ये बता रहे। ये कहीं बाहर से लेता नहीं है और वो दूसरा कोई उससे छीन सकता नहीं है, उपयोग को लिया, यहाँ उपयोग को ही लिया। ये नव इन्हें उसमें क्या बताया, आत्मा के ज्ञान का हरण नहीं किया जा सकता, कोई उसको ले नहीं जा सकता, ऐसे अर्थ की प्राप्ति होती है। ये हो गया नव। अभी दसवां नंबर, जिसे लिंग में अर्थात उपयोग नामक लक्षण में ग्रहण अर्थात, अच्छा, सूर्य की भांति उपराग मलिनता विकार नहीं है, वह अलिंग ग्रहण। अभी इस ग्रहण का तीसरा अर्थ किया, सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण होता है ना, हाँ, तो इसमें ग्रहण नहीं लग सकता। किसमें? उपयोग नामक लक्षण को यहाँ लिंग कहा, और ग्रहण ये सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण जैसा ग्रहण उसको नहीं लगता, ये अर्थ यहाँ ले लिया। इस प्रकार आत्मा शुद्धोपयोग स्वभावी है, ऐसे अर्थ की प्राप्ति होती है। स्वभाव की बात है ना यहाँ पर। ग्यारह नंबर, लिंग, हाँ, उपयोग में वो नहीं है, शुद्धोपयोग उसका स्वभाव है। ये रागद्वेष, ऐसे सूर्य में मलिनता उत्पन्न हुई है, वैसे आत्मा में ये मलिनता नहीं है, स्वभाव में कोई मलिनता नहीं है। ग्यारह, लिंग द्वारा अर्थात उपयोग नामक लक्षण द्वारा ग्रहण अर्थात पौद्गलिक कर्म का ग्रहण जिसके नहीं है, यानी ज्ञान से कर्म का बंधन नहीं होगा। उपयोग नामक लक्षण से किसका ग्रहण नहीं है? पौद्गलिक कर्म का ग्रहण नहीं कर रहा है वो। ग्रहण यानी बाहर से तो कुछ होता नहीं है, पर हमने देखा था ना, आत्मा की परिणति, राग रूप परिणति जिस क्षेत्र में है, वहीं के जो कर्म होने योग्य पुद्गल है वो कर्म रूप परिणमते हैं। तो ऐसा उसमें एक उपयोग के लक्षण के द्वारा नहीं हो रहा है, उसमें राग का निमित्त है, ज्ञान का वो नहीं है। ज्ञान तो स्वभाव है, और स्वभाव से बंध होने लगा तो तीन काल में कभी बंध का अभाव नहीं हो सकता। तो लिंग द्वारा अर्थात उपयोग नामक लक्षण द्वारा ग्रहण यानी पौद्गलिक कर्म का ग्रहण जिसके नहीं है, वह अलिंग ग्रहण है। देखो, एक ग्रहण शब्द के भी कितने अलग अलग अर्थ बता रहे हैं। इस प्रकार आत्मा द्रव्य कर्म से असंयुक्त है, ऐसे अर्थ की प्राप्ति होती है। यानी वो स्वभाव की अपेक्षा बात करे तो उससे द्रव्य कर्म के साथ वो संयुक्तपना उसके नहीं है। अब बारह नंबर, जिसे लिंगों के द्वारा अर्थात इंद्रियों के द्वारा ग्रहण अर्थात उपयोगों को उपभोग नहीं है, उपयोगों विषयों का चाहिए ना, विषयों का, हाँ नहीं, मेरे में वो दिख रहा है, विषयों का चाहिए, हाँ विषयों का चाहिए, नहीं इसमें वो एक मात्रा एक्स्ट्रा दिख रही है, देखो मैं फिर पढ़ती हूँ, हाँ तो डॉट जैसा दिखता है वो निकालो। जिसे इन लिंगों के द्वारा अर्थात इंद्रियों के द्वारा ग्रहण यानी क्या लेना, विषयों का उपभोग नहीं है, सो अलिंग ग्रहण है। यानी वो तो हम विषयों को जान सकते हैं, उसका उपभोग नहीं ले सकते, परंतु माना क्या, हम उसका भोग ले रहे हैं ना, परंतु उसको विषयों का उपभोग नहीं है, उपयोग के द्वारा विषयों का उपभोग नहीं है, इंद्रियों के द्वारा ग्रहण अर्थात विषयों का उपभोग नहीं है, सो अलिंग ग्रहण है। इस प्रकार आत्मा विषयों का उपभोक्ता नहीं है। देखो विषय तो पर पदार्थ है, तो आत्मा तो भोग तो लेता है कि नहीं लेता, किसका लेता है? राग का। हमेशा भोग किसका होगा? पर का नहीं हुआ, अकेले राग का मत कहो, अपने पर्याय का उपभोग, भोग उपभोग ये कहाँ चलेगा, वेदन शब्द आता है, तो वेदन पर का होता है क्या, ज्ञान का एक्चुअली अपने पर्याय का होता है, रागी दशा में राग का उस वो वेदन हो रहा है, वेदन हो रहा है अभी, परंतु हम क्या मानते हैं, हम पर का वेदन कर रहे हैं, यानी लड्डू का वेदन किया कि नहीं है, वो मीठेपन का वेदन किया नहीं, उसके प्रति आपका आसक्ति भाव है, वो हमने उस राग का वेदन किया, लड्डू का तो ज्ञान किया ना, उसके आत्मा यानी ज्ञान, ज्ञान में रहते हुए वो जो पुद्गल के स्पर्श रसगंध वर्ण है उसको जान लेता है, उसको भोगता है, ऐसी बात नहीं है, उसका उपभोक्ता नहीं है, वो भोग किसका कर रहा है, अपने पर्याय का, पर के पर्याय का कैसा करेगा, ये कह रहे हैं यहाँ पर, देखो ऐसे अर्थ की प्राप्ति होती है। 13 नंबर, लिंग द्वारा अर्थात मन अथवा इंद्रियादि लक्षण के द्वारा ग्रहण अर्थात जीवत्व को धारण कर रखना जिसके नहीं है वह अलिंग ग्रहण है। इस प्रकार आत्मा शुक्र और आर्तव को अनुविधायी यानी अनुसार होने वाला नहीं है, ऐसे अर्थ की प्राप्ति होती है। वो किसी अपेक्षा से हम कहेंगे अपने ही पर्याय का वो करता है कहो या भोगता है, कब, अज्ञानी दशा में वो राग का भी भोगता है, करता भी है, ज्ञान अवस्था में राग का ज्ञाता हो जाएगा, क्योंकि उससे भिन्नता उसने पहचान ली, अनुभव कर ली। 13 देखो फिर पढ़ते हम, शुक्र और वो जैसे कहते ना स्त्री बीज और पुरुष बीज, उनके कारण जो पैदा होने की बात वैसा उसके नहीं है। देखो लिंग द्वारा अर्थात मन अथवा इंद्रियादि लक्षण के द्वारा ग्रहण अर्थात जीवत्व को धारण कर रखना जिसके नहीं है वह अलिंग ग्रहण है। ऊपर उसका संस्कृत में कुछ यह उसका आया होगा ना, जयसेन आचार्य ने क्या कहा उसको, नहीं उतने नहीं उन्होंने, उसके अनुसार होने वाला वो नहीं है, मैंने किसी के द्वारा उत्पन्न हो जावे ऐसा नहीं है। 14 नंबर, लिंग का अर्थात मेहनाकार पुरुषादि की इंद्रिय का आकार का ग्रहण जिसके नहीं है सो अलिंग ग्रहण है। लिंग यानी वेद के अर्थ में ये लिंग शब्द आ गया, यानी उनका जो आकार है वैसा उसका ग्रहण नहीं हो सकता। इस प्रकार आत्मा लौकिक साधन मात्र नहीं है, ऐसे अर्थ की प्राप्ति होती है। फिर 15 नंबर, लिंग के द्वारा अर्थात अमेहनाकार के द्वारा जिसका ग्रहण अर्थात लोक में व्यापकत्व नहीं है सो अलिंग ग्रहण है। इस प्रकार आत्मा पाखंडियों के प्रसिद्ध साधन रूप आकार वाला यानी लोक व्याप्ति वाला नहीं है, ऐसे अर्थ की प्राप्ति होती है। पहले में पहले लिंग ने पुरुषादि की इंद्रिय के आकार की बात है, वैसा तो नहीं है, तो अहमेनाकार ने पूरे विश्व जितना उसका आकार है पूरे विश्वव्यापी है ऐसा भी नहीं है, ये कहना चाहते हैं। 16, जिसके लिंगों का अर्थात स्त्री पुरुष और नपुसक वेदों का ग्रहण नहीं है वह अलिंग ग्रहण है। इस प्रकार आत्मा द्रव्य से तथा भाव से स्त्री पुरुष तथा नपुसक नहीं है, इस अर्थ की प्राप्ति होती है। 17, लिंगों का अर्थात धर्म चिन्हों का ग्रहण जिसके नहीं है वह अलिंग ग्रहण है। अभी यहाँ इन्हें मुनिलिंग वगैरह ले लेना यहाँ पर, मुनिलिंग, हाँ यहाँ लिखा ना धर्म चिन्ह, मुनिलिंग या श्रावक का चिन्ह जिसको श्रावण श्रावक का लिंग कहेंगे हम, लिंगों, हाँ धर्म चिन्हों का ग्रहण जिसके नहीं वह लिंग ग्रहण है। इस प्रकार आत्मा के बहिरंग यति लिंगों का अभाव है, इस अर्थ की प्राप्ति होती है। इन्हें स्वभाव में वो कुछ नहीं है, वो तो शरीर का चिन्ह बता जा। 18 लिंग अर्थात गुण ऐसा जो ग्रहण अर्थात अर्थावबोध, अर्थ का अवबोध, इन्हें पदार्थों का ज्ञान जिसके नहीं है सो अलिंग ग्रहण है। इस प्रकार आत्मा गुण विशेष से आलिंगित न होने वाला ऐसा शुद्ध द्रव्य है, ऐसे अर्थ की प्राप्ति होती है। उन्नीस लिंग अर्थात पर्याय ऐसा जो ग्रहण अर्थात अर्थावबोध विशेष, ऊपर तो अर्थावबोध इतना ही लिया, अब पर्याय भी लेना है ना, अर्थावबोध विशेष जिसके नहीं है सो अलिंग ग्रहण है। इस प्रकार आत्मा पर्याय विशेष से आलिंगित न होने वाला ऐसा शुद्ध द्रव्य है, ऐसे अर्थ की प्राप्ति होती है। यानी मात्र वो पर्याय के द्वारा ही उसको जाना जावे ऐसी बात नहीं है। 20 लिंग अर्थात प्रत्यभिज्ञान का कारण ऐसा जो ग्रहण अर्थात अर्थावबोध सामान्य जिसके नहीं है वह अलिंग ग्रहण है। इस प्रकार आत्मा द्रव्य से नहीं आलिंगित ऐसी शुद्ध पर्याय है, ऐसे अर्थ की प्राप्ति होती है। देखो प्रत्यभिज्ञान किसको कहते हैं, जिसको जोड़ रूप ज्ञान कहते हैं। जैसे हमने किसी को जाना, हमने आपकी पर्स देखी तो हमारे पास ऐसी पर्स थी, हमें उसका याद आ गई, सामने का वर्तमान का ज्ञान और स्मृति इसका जोड़ रूप ज्ञान होता है। यानी उसमें क्या होगा, ऐसी भी होगी या इससे थोड़ी अलग थी, मेरा कलर अलग था या अलग है, यानी उसके साथ हम पूर्व में जाने हुए कि कंपैरिजन, वो जोड़ रूप ज्ञान होता है, उसको प्रत्यभिज्ञान कहते हैं। पहले स्मृति को लेते बाद में प्रत्यभिज्ञान लेते हैं। अभी अभी इसको हम ज़्यादा से गुरुदेव के प्रवचन में अधिक खोलकर बताएंगे, उस वहाँ से जानेंगे। ये तो अमृत चंद्राचार्य ने 20 बोल किए इसमें से, जयसेन आचार्य ने इतना विस्तार नहीं किया, फिर भी हम उसको देखते हैं। पेज कहाँ है, 1, हाँ पेज नंबर 338 है मेरे हिंदी में, हाँ आप गुजराती में जरा बताना, जहाँ 171 कंप्लीट हुए जयसेन आचार्य के, मिला आपको कौन सा है पेज नंबर, पेज नंबर कौन सा है,
328
जयसेन आचार्य की टीका, वो संस्कृत वाली,
तो इससे ले ना, ये अक्षर बड़े हैं,
हाँ नहीं उनके पास नहीं है ना वो,
आप उसमें देखो ना,
हाँ मिस्टेक फिर देखना आप देखना। एवं पुद्गल स्कंधाना कहाँ है ये इसमें, अच्छा अच्छा हाँ 2 नंबर पेज पर है, 7 नंबर की पुस्तक में। अभी हम इसके साथ पढ़ेंगे तो वहाँ उसमें कुछ मिस्टेक होगी तो भी निकल जाएगी। एवं पुद्गल स्कंधानाम बंधे व्याख्यान मुख्यतया द्वितीय स्थले गाथा पंचकम गतम। अभी इसके पहले हमने क्या देखा था, उस बंध कैसे होता है, वो तो स्निग्धत्व रुक्षत्व और 2 गुण का डिफरेंस, उसकी बात विस्तार से देखी थी। अभी 5 गाथाएं गई। इति अपदेशो परमाणु इत्यादि गाथा नवकेन, यानी अपदेशो परमाणु, परमाणु अप्रदेशीय ऐसी बात आई थी ना, आपको नहीं मिला, फिर से आपका नंबर जरा पेज
नंबर 2
गुजराती में,
नीचे का पैराग्राफ,
मिला ना
नेहा बहन, इसमें देखो अक्षर बड़े हैं।
तो वो पुस्तक नहीं है उनके पास,
नीचे है ना?
नहीं, वो छठे पुस्तक हो।
अच्छा, छह नंबर
की है। हाँ, मिला ना? हाँ, देखो, एवं पुद्गल स्कंधानाम, देव हो गया। बंद व्याख्यान मुख्यतया द्वितीय स्थले गाथा पंचकम गतम इति अपदेशो परमाणु इत्यादि गाथा नवकेन, इन्हें नव गाथाओं के द्वारा परमाणु स्कंद भेद भिन्न पुद्गलानाम पिंड निष्पत्ति व्याख्यान मुख्यतया द्वितीय विशेषांतर अधिकार समाप्त, पूरा अधिकार समाप्त हुआ। पहले तो द्वितीय स्थल समाप्त हुआ और फिर नव गाथाओं के द्वारा पुद्गल परमाणु और स्कंद के भेद से पुद्गल का और पिंड निष्पत्ति की जो बात थी, ऐसे दूसरा विशेष अंतर अधिकार समाप्त हुआ। अथ यानी अब यहाँ से आगे एकोनविंशति गाथा पर्यंतम, 19 गाथाओं तक जीवस्य पुद्गलेन सह बंध मुख्यतया व्याख्यानम करोती। जीव का पुद्गल के साथ, पहले पुद्गल के साथ बंध की बात की थी, अब जीव का पुद्गल के साथ बंध है उसका विशेष व्याख्यान करेंगे। तत्र षट स्थलानि भवन्ति, वहाँ 6 स्थल होंगे। तेषु आदौ, उनमें से पहली अरसम अरूवम इत्यादि शुद्ध जीव व्याख्यानेन गाथा एका, यानी अभी जो हमने अलिंग ग्रहण की गाथा पढ़ी है वो तो शुद्ध जीव द्रव्य की एक गाथा है। मुत्तो रुवादि, नेक्स्ट जो गाथा होने वाली आने वाली वो इत्यादि पूर्व पक्ष परिहार मुख्यतया गाथा द्वयम इति प्रथम स्थले गाथा त्रय, यानी उसके बाद दो गाथा आने वाली है तो तीन गाथा गई दूसरे पहले स्थल में। तदनंतरम भावबंध मुख्यत्वेन ओगमो इत्यादि गाथा द्वयम, यहाँ भावबंध की मुख्यता से ओगमो इत्यादि दो गाथाएं हैं। अथ परस्परम द्वयोः पुद्गलयोः बंधो जीवस्य रागादि परिणामेन सह बंधो जीव पुद्गलयोः बंधश्च इति त्रिविध बंध मुख्यत्वेन फासेः पुद्गलानाम इत्यादि सूत्रद्वयम्। क्या कहना चाहते हैं? यानी यहाँ पर परस्पर दोनों का, पुद्गलों का बंध, जीव का रागादि परिणाम के साथ बंध और जीव और पुद्गलों का बंध। पहले हमने पुद्गल का पुद्गल के साथ बंध देखा, फिर जीव का रागादि के साथ बंध, अब जीव का पुद्गल के साथ बंध। इसे तीन प्रकार के बंध बताए। त्रिविध बंध मुख्यत्वेन फासे पुद्गलानम इत्यादि सूत्रद्वयम्, यानी दो सूत्रों के द्वारा उसका वो विषय बताया। ततः परम, उसके बाद निश्चयेन द्रव्य बंध कारणत्वात् रागादि परिणाम एव बंध। क्या कहते हैं? निश्चय से द्रव्य बंध का कारण होने से रागादि परिणाम ही बंध है इति, इस तरह से कथन मुख्यतया, उस कथन की मुख्यता से रत्तो बंध दी इत्यादि गाथात्रय। रत्तो यानी रक्त, यानी कौन सा? रागी। रागी बनता है, रागी कहने से रागी द्वेषी आए, कषाई के लिए रागी शब्द आता है। अकेला राग करने वाला रागी और द्वेष करने वाला द्वेषी ऐसी बात नहीं, रागी कहने से कषाई जीव आ गए, उसकी मुख्यता से रागी बंधता है, ऐसे तीन गाथाएं जाएगी। अथ उसके बाद भेद भावना मुख्यत्वेन भणिदा पुढ़वी इत्यादि सूत्रद्वय, यानी भेद भावना, यानी भेद ज्ञान की मुख्यता से आगे दो सूत्र आएंगे। तदनंतर उसके बाद जीवो रागादि परिणामानाम एव कर्ता न च द्रव्य कर्मणाम इति कथन मुख्यत्वेन। क्या कहते हैं? उसके बाद जीव रागादि परिणाम का ही कर्ता है, द्रव्य कर्म का कर्ता नहीं है, इस कथन की मुख्यता से कुवम सहामादा इत्यादि षष्ठ स्थले गाथा सप्तकम, यानी वहाँ 6 गाथा आएगी जिसमें नहीं 7 गाथाओं के द्वारा छठा स्थल हो जाएगा। यत्र मुख्यत्वमिति वदति तत्र यथासंभवम अन्योपि अर्थो लभ्यत इति सर्वत्र ज्ञातव्यम्। जहाँ मुख्यत्वेन ऐसा कहने में आता है ना, मुख्यता से, वहाँ वहाँ अन्य भी वहाँ कोई अर्थ पाया जाता है। यथासंभव अन्य अर्थ भी वहाँ होता है, ऐसे सभी जगह समझना चाहिए। एवं इस तरह से 21 गाथा भी, एक यानी 19 गाथाओं के द्वारा तृतीय विशेषांतराधिकारे, तीसरे विशेष अंतराधिकार में समुदाय पातनिका, यानी उसका विषय क्या है उसकी चर्चा कर दी उन्होंने। तद यथा, ये तो पूरा ही 19 गाथाओं का विषय उन्होंने बता दिया, आने वाले 19 गाथाओं का विषय बताया। अब जो अरस अरुयो उसकी बात अभी करेंगे। तद यथा, वह इस प्रकार है। अथ किम तरही जीवस्य शरीरादि परद्रव्येभ्यो भिन्नम अन्य द्रव्य असाधारणम स्वस्वरूपम इति प्रश्ने प्रत्युत्तरम ददाति। यानी उसका हेडिंग क्या है कि जीव का शरीरादि परिद्रव्यों से भिन्नत्व जो है, तो उसके लिए अन्य जो अन्य द्रव्यों से असाधारण स्वस्वरूप क्या है, ऐसा प्रश्न करने पर उसका प्रत्युत्तर देते हैं। हमने उसका हेडिंग पढ़ा होगा ना पहले, देखो देखो पेज नंबर 330 पे गाथा के ऊपर देखो। तब फिर जीव का मिला सबको गाथा का हेडिंग,
गाथा पढ़नी है
आपके सातवीं पुस्तक में, हाँ चौथा पेज देखो गुजराती में क्या है। हवे त्यारे जीवनु शरीरादि सर्व परद्रव्यो थी विभाग, विभाग ने उसका भेद, विभागना साधनभूत असाधारण स्वलक्षण शू छे ते कहे छे। यानी जिस असाधारण स्वलक्षण के द्वारा हम जीव को अन्य द्रव्यों से भिन्न पहचान सकते हैं, वो क्या है, ये प्रश्न है। इस प्रश्न के उत्तर में ये गाथा है। अभी मैं पढ़ रही थी ना यहाँ पर संस्कृत में से, अभी जो मैंने पढ़ा ना उसी को फिर मैं पढ़ती हूँ यहाँ पर। तद यथा है ना, एक मिनट कहाँ गया, नहीं 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 मैं नेक्स्ट पेज पर आए। हाँ तद यथा, अथ यानी फिर किम तरही जीवस्य शरीरादि परद्रव्योभ्य, यानी जीव का शरीरादि परद्रव्यों से जो भिन्न, भिन्नम अन्य द्रव्य असाधारणम स्वस्वरूपम इति, यानी अन्य द्रव्यों से असाधारण ऐसा स्वस्वरूप क्या है, ऐसे प्रश्न होने पर उसका उत्तर देते हैं। अरसम अरूपम अगंधम, रस रूप गंध रहितत्वात् तथा च अव्याहार्य अव्याहारमाणां स्पर्श रूपत्वात् च अवत्तम अवत्तम यानी अव्यक्तत्वात्। फिर से रस रूप गंध रहित होने से, उसी प्रकार तच अव्याहार्यम अव्याहार्यमाणा स्पर्श रूपत्वाच्च अव्याहार्यमाण अस्पर्श रूपत्वाच्च अवत्तम, यानी उसके कारण वो अव्यक्त है। पहले रस है, अरूप है और अगंध है, यानी रूप से रहित है, रस से रहित, रूप से रहित और गंध से रहित, और अव्यक्त कहने से स्पर्श से रहित। अशब्दत्वात् असद्दम यानी अशब्दत्वात् अलिंग ग्रहणम अलिंग ग्रहणत्वात् अनिदट्ठ संठानम अनिर्दिष्ट संस्थानत्वात् च, यानी कोई उसका विशेष संस्थान निर्दिष्ट नहीं किया जाता, कहा नहीं जा सकता। निर्देश यानी कथन, निर्दिष्ट यानी कथित, अभी उसका ऐसा कथन नहीं हो सकता। जान जीवम जाने ही जीवम यानी जीव को जानना, ऐसा अरसम अरूपम अगंधम अस्पर्शम अव्यक्तम अशब्दम अलिंग ग्रहणम अनिर्दिष्ट संस्थान लक्षणम च हे शिष्य, यानी वही फिर दोबारा उन्होंने बताया अरस अरूप अगंध स्पर्श अव्यक्त अशब्द और अलिंग ग्रहण और अनिर्दिष्ट संस्थान जिसका लक्षण है, हे शिष्य जीवम यानी जीव द्रव्यम जानी ही, उसे जीव जानो यानी जीव द्रव्य जानो। पुनरपि कथम भूतम और कैसा है, चेतना गुणम समस्त पुद्गलादिभ्यो अचेतनेभ्यो भिन्न समस्तानि अद्रव्य असाधारण, क्या कहते हैं, समस्त पुद्गलादि से भिन्न यानी अचेतनों से भिन्न। समस्त पुद्गलादि क्या है, अचेतन द्रव्य, उनसे जो भिन्न है यानी अन्य द्रव्यों से असाधारण, ऐसा जो स्वकीय लक्षण है उसका, स्वकीय अनंत जीव जाति साधारण। देखो इसी को साधारण भी कहा, असाधारण भी कहा, अन्य द्रव्यों से असाधारण लक्षण। अभी चेतना गुण की बात कर रहे हैं, वो कैसा है, अन्य द्रव्यों से जीव का असाधारण लक्षण है, परंतु अनंत जीवों के, अनंत जीव जाति के लिए साधारण लक्षण है, यानी सभी जीवों में पाया जाएगा, इसलिए उसको साधारण कहा। अनंत जीवों में साधारण है यानी सभी जीवों में पाया जाएगा, परंतु अन्य जो अचेतन द्रव्य है उससे असाधारण है लक्षण, इसलिए कहा समस्त अन्य द्रव्य असाधारण और स्वकीय अनंत जीव जाति साधारण। ऐसा क्या है, चेतना गुणों यस्य, जिसके चेतना गुण है, तम चेतना गुणम च, वह यानी वह चेतना गुण अलिंग ग्राह्यम इति वक्तव्य, उसको अलिंग ग्राह्य कहा, और उसको कथन करने पर यद अलिंग ग्रहणम इति उक्तम तत् किमर्थम इति चेत, बहुतरार्थ प्रति प्रत्यर्थम, उसको अलिंग ग्रहण ऐसे कहने में आया है। तथा ही वही इस प्रकार है, अभी उसका अर्थ क्या है उसको और स्पष्ट कर रहे हैं। पहले तो शब्दशः अर्थ बताया, अभी उसी को और बता रहे हैं। लिंगम इंद्रियम तेना अर्थानाम ग्रहणम परिच्छेदनम न करोति, लिंग ने इंद्रिय उसके द्वारा अर्थानाम यानी पदार्थों का ग्रहण यानी परिच्छेदन यानी ज्ञान नहीं करता, आत्मा इंद्रियों के द्वारा पदार्थों को नहीं जानता है ना, हाँ परिच्छित्ति शब्द आता है ना, ग्रहण का अर्थ ही ज्ञान होता है, ग्रहण के लिए उन्होंने दूसरा संस्कृत शब्द वापरा है, जानना यानी आत्मा इंद्रियों के द्वारा पदार्थों का ग्रहण नहीं करता यानी उसका जानता नहीं है। तेन अलिंग ग्रहणो भवति, इसलिए उसको अलिंग ग्रहण कहा। तदपि कस्मात, वह भी क्यों, स्वयमेव अतीन्द्रिय अखंड ज्ञान सहितत्वात्, ऐसा क्यों कहा, तो कहते वह स्वयं ही अतीन्द्रिय अखंड ज्ञान सहित होने से वो तो लिंग द्वारा नहीं जानता, इंद्रिय द्वारा नहीं जानता, समझ में आती है बात, वो स्वयं अतीन्द्रिय अखंड ज्ञान स्वरूप होने से वो तो इंद्रिय द्वारा जानता है, ऐसी नहीं है बात। तेन एव लिंग शब्द वाच्येन चक्षुरादि इंद्रियेण अन्य जीवानां यस्य ग्रहणं परिच्छेदनं कर्तुं न आयाति तेन अलिंग ग्रहण उच्चते, ये पहले दो बोल यहाँ वैसे ही लिया है ना, यानी तेने वो लिंग शब्द वाच्य ने, उसी लिंग शब्द वाच्य यानी उसी लिंग शब्द से और क्या कहा जाता है कि चक्षुरादि इंद्रियों से अन्य जीवों को जिसका ग्रहण यानी ज्ञान नहीं होता, यानी अन्य जीव आत्मा को इंद्रियादि द्वारा जान नहीं सकते, इंद्रियों के द्वारा चक्षुरादि इंद्रियों के द्वारा आत्मा को नहीं जान सकते, इसलिए उसको अलिंग ग्रहण कहते हैं। तदपि कस्मात, वह भी क्यों, निर्विकार अतीन्द्रिय स्वसंवेदन प्रत्यक्ष ज्ञान गम्यत्वात्, ये आत्मा कैसे जाना जाता है, तो कहते निर्विकार विकार रहित, हो गया समय, एक वाक्य पूरा करती हूँ, विकार रहित अतीन्द्रिय, अतीन्द्रिय इंद्रिय का वहाँ काम नहीं, अतीन्द्रिय स्वसंवेदन अपने ही ज्ञान के द्वारा उसका अनुभव हो जावे, प्रत्यक्ष ज्ञान गम्यत्वात्, प्रत्यक्ष ज्ञान के द्वारा वो जानने में आता है। अब जो आगे का धूमादि की बात है वो तो कल देखेंगे। हाँ हाँ, गम्यत्वात्, प्रत्यक्ष ज्ञान गम्यत्वात्, तीसरी लाइन मेरे में। अब वहाँ चिन्ह करके रखना, कोई उसको दोहरा के फिर हम आगे बढ़ेंगे। जावाणी के ज्ञान तय सूझे लो कालो, सोवाणी मस्तकनम सदा देत हो नेहा भाई।